نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 7 habits of successful people اس کے سلسلے کا آج ہمارا آخری سیشن ہے اور ہم اس میں ساتویں عادت کو دیکھیں گے ابھی تک ہم جو 6 عادات دیکھ چکے اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے دل کی تختیوں پہ بھی لکھی جائیں پہلی عادت تھی مثبت سوچ پازیٹیو تھنکنگ دوسری عادت تھی مستقبل پر نظر یعنی پہلے فیوچر کو دیکھو پھر قدم اٹھاؤ کہاں پہنچو گے انجام کو دیکھ کر آغاز کرو تیسری عادت ہم نے دیکھی اہم کام پہلے یعنی فرسٹ کم فرسٹ جو کام پہلے کرنا تھا اس کو پہلے کیجئے جو بعد میں کرنا ہے اس کو بعد میں کریں گے اور چوتھی عادت دیکھی تھی جیتیں اور جیتنے دیں ون ون تم بھی جیتو ہم بھی جیتتے ہیں نہ تم ہارے نہ ہم ہارے دونوں ہی جیتے یعنی ہارنے والے کو اس کی ہار کا احساس نہ دلائیے پانچویں عادت ہم نے دیکھی تھی پہلے سمجھیں پھر منوائیں پہلے انڈرسٹینڈ کریں پھر ٹو بی انڈرسٹوڈ یہ نہ کہیں کہ لوگ مجھے سمجھیں بلکہ یہ کہیے کہ میں لوگوں کو سمجھنا چاہتی ہوں اس کے لیے ایک انسان اپنے آپ کو کتنا تیار رکھتا ہے اور چھٹی عادت ہم نے دیکھی تھی تعاون یعنی سنرجائز ہونا کہ کیسے کاموں کو خوبصورت طریقے سے کرنا ہے آج ہم دیکھیں گے ساتویں عادت اور یہ ہے شارپن دا سو درانتی کو تیز کرو اس کو دیکھتے ہی سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آیا ہوگا اگر اس کا میں اردو میں لفظ کروں تو آپ خوش ہوں گے کیونکہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی اس ضرب المثل کو سمجھے نا تو ساتویں عادت ہے تفریح تفریح کا اہتمام کیجیے زندگی میں شارپن کہتے ہیں تیز کرنا جیسے چاقو کو تیز کرتے ہیں نا سو کہتے ہیں آری کو ایک شخص تھا کسی جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا دوسرے شخص کو کہ وہ ایک درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کب سے یہ درخت کاٹنے کی کوشش کر رہے ہو پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگا 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اور میں یہ درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بات سن کے وہ کہنے لگا وہ بے وقوف بندے تم 4 گھنٹے سے اس درخت کے تنے کو جو کاٹ رہے ہو تم 15 منٹ کا وقفہ لو اس سارے کو تیز کرواؤ جس سے تم درخت کاٹ رہے ہو تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا تو جو کاٹ رہا تھا وہ اسے کہنے لگا احمق تمہیں پتہ میں کتنا مصروف ہوں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں اس کو تیز کرواؤں تو یہ ہے تفریح کہ آپ میں ہم سب جب کام کرتے ہیں نا تو ہمارا جسم چاہتا کیا ہے کہ ہم اس کام کو انجوائے بھی کریں بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھکے تھکے بجھے بجھے روئے روئے اور بالکل اپنے اندر سے خالی پن کی احساس ہوتا ہے ان کو کام کر رہے ہوتے ہیں ہو نہیں رہا ہوتا ایک کال ہے کہ چھت اس وقت مرمت کرو جب سورج چمک رہا ہو فائدہ کیا ہوگا جب سورج چمک رہا ہے آپ اپنے گھر کی چھت کی لیپا پوتی کریں گے نتیجہ کیا ہوگا کہ فوراً خشک ہو جائے گا ایک دو دن کے اندر چھت تیار ہے اور اگر آپ نے چھت اس وقت مرمت کرنی شروع کر دی جس دن بارش نہیں بلکہ سنو بھی ہے تو آپ کی چھت کی مرمت ایک مہینے میں بھی نہیں ہوگی تو تفریح کیا ہے بہترین کام کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا فرحہ اس کا روٹ ہے فرحہ فرحت لفظ بی سی سے ہے فرح فرحہ بی سی سے ہی ہے یعنی تفریح تفیل کا وزن ہے اگر اس کی آپ گرامر پہ غور کریں تو اس میں کنٹینیوٹی آتی ہے مسلسل خوشی محسوس کرنا ہر بندہ مختلف چیزوں سے تفریح حاصل کرتا ہے کسی انسان کی زندگی میں تفریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈزنی لینڈ چلا جائے کوئی تفریح اس طرح مناتا ہے کہ وہ کسی کلب میں چلا جائے اور وہاں جا کے شراب پیے کسی کے ہاں تفریح ہے کہ وہ پہاڑی مقامات پہ چلا جائے اور کسی کی تفریح جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے تو ہر بندے کے تفریح کے انداز بالکل مختلف ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم اپنی روٹین لائف میں اس طریقے سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم مشین بن جاتے ہیں جس وقت بھی آپ یہ محسوس کریں نا کہ اب آپ سے کام نہیں ہو رہا اب آپ کا صرف یہاں بیٹھنا اور نہ بیٹھنا ایک ہی برابر ہے صرف میری سمجھ لیں کہ ایک حاضری ہے یا لوگوں کو میں دکھ رہا ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو تھوڑی سی بریک چاہیے آپ لوگ اپنے آپ کو فوراً اس وقت چیک کیجئے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اس طرح کا بریک چاہیے وہ بریک کیسے لے سکتے ہیں اس کی 4 مختلف صورتیں ہوتی ہیں یعنی خوشی پہنچانا خود کو انجوائمنٹ کے لیے اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے 4 مختلف طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک، ہمارا جسم تفریح چاہ رہا ہوتا ہے، یعنی جسمانی رخ سے کچھ کیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم خوشی حاصل کر سکیں. دوسری صورت ہے دماغ، اپنے ذہن کو ریلیکس کیجئے. اور تیسری چیز ہے دل. آپ ان تینوں کو جب جمع کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ ان کا آپس میں ربط کتنا ہے. چوتھی چیز ہے روح. ہمارا یا تو بدن تھکتا ہے، آپ فیل کریں کہ آپ جب کام نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ کا جسم تھکا ہوا ہے تو پھر جسم کو تفریح دیجئے. کیسے؟ نمبر ایک، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں، ورزش کریں. بھوک لگ رہی ہے تو اچھا سا کوئی کھانا کھا لیں. تیسری چیز سوچئے کہ نہیں، اس وقت تو مجھے نیند کی ضرورت ہے. آپ کھانے سے نہیں بہلا سکتے بلکہ آپ کو نیند چاہیے، تو آپ تھوڑا سا اسٹریچ کر لیں، سو لیجئے. اگر یہ سب کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بھوک لگی ہے، نہ نیند لگی ہے، تو آپ کیا کریں، آنکھیں بند کر کے نا تو تھوڑی دیر اپنے آپ کو پرسکون کریں، کوئی اچھی بات سوچیں، امیجینیشن کو اسٹرانگ کریں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت مجھے کیا چاہیے. ہمارے یہاں عموماً تفریح لفظ کا صحیح معنی بھی نہیں جانتے. اینڈ پہ تھوڑا سا آپ کو اسلام میں تفریح کا کیا کانسیپٹ ہے اس پہ بھی اشارہ دے دوں گی. لیکن آپ کام کر رہے تھے، آپ تھک گئے، اب آپ سوچئے کہ آپ کو اس وقت کیا چاہیے. ان چاروں میں سے جو بھی چیز چاہیے وہ کیجیے، ورنہ آپ کا کرنا یا نہ کرنا ایک برابر ہے. دیکھیے، انسان کمزور ہے، بلکہ ہر مخلوق کمزور ہے. سورت بقرہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو نیند تو نیند، اونگ بھی نہیں آتی. کائنات میں اللہ کے سوا ہر چیز سوتی ہے. پہلے دور میں آپ نے سوچا ہوگا کہ رات کے وقت پودے کے پاس نہ جاؤ کیونکہ پودے بھی سوتے ہیں، پھول نہ توڑو، پھول بھی سوتے ہیں. اب سائنس نے اس کو پروف کر دیا. ایک پوری رپورٹ میں نے اپنی ایک کلاس میں آیت الکرسی کی تفسیر میں سنوائی تھی کہ کس طریقے سے پودے رات کو سوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ بادر دیم، جہاں پودے ہیں وہاں باتیں بھی نہ کرو. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں، مراد یہ ہے کہ اب ان کو چھوڑ کے آپ اندر اپنے گھروں میں جائیں، اور ویسے بھی کاربن وہ چھوڑتے ہیں تو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہم سب بھی انسان ہیں، ہم کتنے اسٹرانگ ہوں لیکن ہم ان چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں. دوسری چیز آپ سوچئے کہ نہیں، جسم تو نہیں تھکا ہوا، وہ تو میں فریش ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے. اب دماغ تھکنے کے کئی کام ہیں، بس آپ کمپیوٹرز کا کام کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ گھر میں کام کرتے ہیں، کچھ بھی، آپ بہت پریشان ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ تفریح کیسے لیں؟ کوئی اچھی سی لائٹ سی بک لے کے پڑھنا شروع کر دیں، کچھ لکھنا شروع کر دیں. یقین کریں اگر آپ اپنا ذہنی دباؤ کم کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کاپی پین لیں، جو دل میں آتا لکھیں. آپ نے کبھی ایک چیز فیل کی ہے؟ کچھ لوگ لیکچر سنتے ہوئے لکیریں لگاتے رہتے ہیں. آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے ابھی تک جو اپنے نوٹس کے کناروں پہ پھول بناتے رہتے ہیں، پتیاں بناتے رہتے ہیں. یہ ہم اپنے ذہن کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں، جیسے میں کسی کو جانتی ہوں، وہ بیٹھتی ہیں نا تو جو بھی سبزی پھل بھی کاٹ رہے ہیں یا فروٹ کھا رہے ہیں تو کھانے کی ٹیبل پہ باتیں کریں، تو وہ اورنج کے چھلکے کاٹتی رہتی ہے. کوئی بھی چیز ہاتھ میں نا تو اس کے چھوٹے چھوٹے چورا 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 کر دیے. کیوں؟ کہ اس سے ان کے ذہن کو سکون مل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک چیز بہت جب اکڑ جاتی ہے نا، تو آپ اس کو تھوڑا سا دباتے ہیں تو اس کا جو غبار ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو آپ خود فیل کریں کہ ذہن کا سکون کس میں ہے. اب یہ آج باتیں تو ہم پڑھ رہے ہیں ایک جنرل شخص کی لکھی ہوئی، لیکن اگر اس کو آپ اسلام کی نظر پہ لے لیں تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے، اطمینان ملتا ہے. تو پھر تیسری چیز آپ نوٹ کیجئے کہ کیا آپ کے دل کو تو نہیں تفریح چاہیے، دل تو نہیں تھک گیا، ایک روٹین سے فیڈ اپ تو نہیں ہو گئے؟ تو پھر آپ جذباتی رخ پر تفریح منائیں گے. مثلا اچھے تعلقات بنائیں، کسی دوست کو ملنے چلے جائیں، کسی کا کام کر دیں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیں، گھر والوں سے مسکرائیں، یعنی پھر اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. ہمارا دل خوش ہوگا جب ہمارے تعلقات دوسروں سے ٹھیک ہوں گے، ہمارا ذہن سکون میں ہوگا جب ہم اپنے مائنڈ کو بالکل نیوٹرل بیس پہ لے آئیں گے. کبھی آپ دیکھیں گاڑی جب چلتی ہے بہت ہیٹ اپ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئی سائڈ پہ جگہ دے کے اس کو روکتے اور پھر گاڑی کو بند کر کے اس کا بونٹ کھول دیں گے، اس کو ٹھنڈا کریں گے نا، ریلیکس، نیوٹرل پہ کریں. بالکل آپ خود کو نیوٹرل کریں. مجھے ایسے لگتا ہے تفریح از ایکول ٹو نیوٹرل. آپ جیسے اپنی گاڑی کو نیوٹرل میں ڈالتے ہیں تو وہ جلتی نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. फिर इन तीनों में भी कुछ नहीं है तो फिर मान लीजिए कि अब आपकी रूह को सुकून चाहिए, रूह का कोई तकाजा पूरा कीजिए बात नहीं रूह पे। फिर इसके लिए आप क्या करें, गौर व फिक्र कायनात पे गौर करें, मुताला इबादत है। आप इस तरीके से अल्लाह की कायनात पे गौर करें, मसलन जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ कैसे गिर रही है, क्या हो रहा है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या दिया है, किस तरह से किया है। इस तरीके से आप फील करेंगे कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्या कभी आप ड्राइविंग में इस कदर मसरूफ़ हुए कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना ही भूल जाए? पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। बिल्कुल इसी तरह बाज़ दफ़ा एक सूरत बन जाती है हमारी, मैं बोलती हूँ आप लिखें, लुक बिज़ी लुक, मैंने देखने में बिज़ी लगते हैं, आपकी लुक बिज़ी है, लुक बिज़ी डू नथिंग, ये चार लफ्ज़ हैं। लुक बिज़ी, देखने में आप बड़े मसरूफ़ लग रहे हैं, बिज़ी बिज़ी बिज़ी, हाय बड़े बेचारे आप बड़े मसरूफ़, लोगों के सरों पे हवा बना होगा आपको देख देख के कि ये बेचारी तो बड़े ही काम करती है, लेकिन डू नथिंग, कर कुछ नहीं रहा, सिर्फ शोर मचा रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है जहाँ बैठे अब तो मसरूफ़ बड़े हो गए, अब तो काम बड़े हो गए। और ये मोमेंट कब होता है, जब हम पहली दफ़ा कोर्स शुरू करते हैं कुरान का, आपको याद होंगे आपके शुरू के दिन, जहाँ दावतों में बैठे, टेस्ट बढ़े, रिजल्ट बढ़े, ये बढ़ा ये बढ़ा, एक ओवर एक्साइटमेंट भी होता है ना नई चीज़, जैसे बर्फ़ पहले दिन गिरे तो कैसी लगती है और दूसरे तीसरे दिन गिरे तो कैसी लगती है, फ़र्क हो जाता है ना। तो बहरहाल आप देखिए कि ज़िंदगी को तवाज़ुन में रखें। अब आप सोचेंगे कि ये बातें हम किस तरह फिट करें, यानी तफरी से मुराद है कि अब कल से क्लास कैंसिल करके हम छुट्टियों पे चले जाएं। आइए ज़रा ये भी देखते हैं कि हमारी अमूमन तफरीहात कैसी होती हैं। आप शेयर करें कि मोस्ट लाइकली हम पाकिस्तानी कल्चर के लोग तफरी के नाम पे क्या करते हैं। जी आप दिल हल्का कर ले, यानी बाज़ दफ़ा दिल पे जब बोझ होता है तो इंसान अपना अच्छे दोस्त से बात करे। हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? वल्लाहु मअल मुत्तकीन, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जितनी प्यारी दोस्ती अल्लाह ताला से निभ सकती है किसी से नहीं, क्योंकि वो ऐसा दोस्त है ऑलवेज अवेलेबल, ना वो आराम करता है, ना वो सोता है, ना वो पाकिस्तान गया है। आपको अपने दोस्त की ज़रूरत ही पता चला, दोस्त साहब तो पहले कहीं और गए हैं। आप अपना दुख बताना चाह रहे थे, पता चला दोस्त साहब तो आपसे पहले से दुखी हैं। लोग हमें क्या देंगे? ठीक है हम इंसान हैं, हमें इंसानों में बहुत मज़ा आता है, लेकिन हम अपने मिस करते हैं ना इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें इंसान परखता है कि हमें क्या अच्छा लगता है। बस अब आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी में कोई एक चीज़ होती है, मिसाल देती हूँ कि जैसे अब आप लोग कुरान के साथी हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अब आप क्या अपने सीखने सिखाने को एक बोझ समझेंगे? क्या अब आपके लिए ये एक मजबूरी की सौदा हो गया? थक जाएंगे आप, बहुत जल्दी थक जाएंगे। हम सब यहाँ रोज़ आते हैं, आप तो शायद बीच में एक छुट्टी कर लेते होंगे, लेकिन हम में से चंद साथी हैं जो छुट्टी नहीं कर पाते। अब आप देखिए, मैंने आज बहुत सोचा, मैं आपको पहले अपनी फीलिंग्स बताती हूँ कि जब मैं ये तफरी पढ़ा रही हूँ, अब ये टॉपिक ऐसा था, सुबह मैंने पहले ये सोचा कि मैं ये करती हूँ कि मैं अमूमन एक सूट तीन दिन पहनती हूँ, जैसे एक मेरी आदत है, क्योंकि मैं घर जाके बदल लेती हूँ तो मेरे गंदे नहीं होते कपड़े ना, और आते हुए सुबह पहन लेती हूँ। फिर मैंने आज जो जोड़ा था उसका तीसरा दिन था, यानी मैं दो दिन पहन चुकी थी और वो जोड़े भी वही कई साल के पहने हुए और बुझा बुझा सा जोड़ा था, कोई इतना मज़े का नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं इसी कपड़ों में इसी हाल हुलिये में जाऊंगी ना तो मैं आज का टॉपिक सही नहीं पढ़ा सकूंगी, क्योंकि मैंने आज आपको तफरी का टॉपिक पढ़ा दिया। फिर मैंने ये जोड़ा निकाला, ये भी पुराना ही है लेकिन आप देख रहे होंगे इसका रंग ज़रा शोख है ना, ऐसे मैंने खुद को खुश किया आज, मैंने कहा मैं ये पहनती हूँ, कोई बात नहीं मुझे क्या लगे, मैंने तो अपने लिए हमेशा पहनना है। फिर मैंने रिलैक्स किया खुद को, यानी मैंने फील किया इन दो चार दिनों में कि एक दिन मैं बिल्कुल ऐसे आई कि मैं दुपट्टा अपना भूल गई। अब मेरा जो सर का स्कार्फ है ना वो इतना मोटा, जैसे आप समझे वेलवेट का कपड़ा होता है, डबल है, वो मैं पहनती ना तो मेरे कान भी बंद हो जाते हैं, ऐसे मुझे फील होता है। इत्तेफाक से मैंने वही लिया था और मैं उस दिन अपना दुपट्टा लेके आना भूल गई। यकीन करें सारा दिन मैं उसी में रही, अबाया भी नहीं उतारा क्योंकि स्कार्फ के साथ मुझे फिरना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं पूरा दिन अपने आप को ऐसे मिसफिट फील कर रही थी। फिर मैंने बहुत सोचा कि आज मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं डिफरेंट रूप में हूँ ना, कि मुझे मज़ा नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स का हक मारा। अब ज़ाहिर देखें कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, कंघी करते हैं, आप अपने आप को सेट करते हैं, उसमें आपके 10-5 मिनट लगते हैं ना, लेकिन ये आपकी तफरी होती है, ये आपकी खुशी होती है। आप अपने घर वालों के सामने पहनते हैं, उनके लिए पहनते हैं, उनकी भी खुशी है, आपकी भी खुशी है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि आप मुझे देखें ना देखें, मुझे इससे नहीं, ये मेरे दिल की खुशी है। तो जब आप यहाँ आते हैं, मिसाल है कि अब आप रोज़ स्टूडेंट बन के आते हैं, आपको एज अ स्टूडेंट किस तरीके से आना चाहिए, आप उठ के कंघी करें, शावर लें, साफ अबाया पहने, धो के पहने, आप स्काफ अच्छा साफ पहने, आप देखेंगे कि ये आपकी तफरी होगी। मैंने सोचा कि मेरे पास तफरी किधर है ना, जैसे मैं अपने दिल से अगर पूछूं कि 7 days में लोग कहते हैं, और ये अमेरिका में तो बड़ा मारूफ जुमला है ना कि अगर आप छुट्टी नहीं किसी को देंगे तो वो काम भी नहीं करेगा ना, जैसे छुट्टी वाले दिन आप इवन सफाई वाली को बुलाएं तो उसको लगता है आपने गाली निकाली है। इतना लोग माइंड करते हैं कि संडे को आप हमें बुला रहे हैं, ये मेरा फैमिली डे है, क्योंकि वो सारा हफ्ता काम कर रहे होते हैं और काम बाकी वो काम की तरह करते हैं। हमारा जिस्म बिल्कुल इस पर, मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं फील होती कि मुझे तफरीह के लिए कोई अलग चीज़ चाहिए। क्यों? इसलिए कि सबसे पहली बात तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम कुरान के साथ जुड़ते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल यही चीज़ आ जाती है जिसको तफरीह कहते हैं। वल्लाही जितना इंसान अल्लाह की किताब से जुड़ने के बाद तफरी मनाता है ना आम लोगों के, तो वो शायद नसीब में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि आम काम आप करते हैं ना, आप उसमें थकते ज़्यादा हैं, इस काम में थकन नहीं होती। एक ख़ास किस्म की जिसको आप कह सकते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी, कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, इसमें खुशी साथ ही मिल जाती है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, चाहिए कि इसके साथ खुशियाँ मनाओ। फिर आप देखिए इंसान का नफ्स अमूमन क्या चाहता है, मैं इस वक्त अपने ऊपर लेके नहीं बात कर रही, एक जनरल चीज़ आपको बताती हूँ कि बज़ाहर आप अपने आप पे लें। आप में से किसी एक को भी मैं पॉइंट आउट करती हूँ ताकि मिसाल समझ आ जाए। मसलन ये कि आप में से, चलें हम फायज़ा को ले लेते हैं, क्योंकि मैं फायज़ा को कोर्स शुरू होने से पहले भी एक 10-12 दिन पहले मिली थी ना। अब फायज़ा पिछले तकरीबन 2 साल अब हो गया आलमोस्ट ये कुरान के साथ जुड़ी हुई है ना। अब बज़ाहर इनकी नंद या इनकी सास या इनकी माँ बहन क्या सोचती होंगी कि बड़ी बिजी हो गई है, यही सोचेंगे ना। आपके मियाँ यही सोचेंगे ना कि अब तुम बहुत मसरूफ़ हो गई हो, अब तुम थकी होगी। आप अपनी फीलिंग सच बताएं, आप अपने ऊपर रहम खाती हैं तो खाइए, कुछ भी कहें, लेकिन आप शेयर करें कि अब 2 साल की ज़िंदगी के दिन और पिछली ज़िंदगी में आपको क्या फ़र्क लगता है। जी
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल भी यही सोच रही थी, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं यही गौर व फिक्र कर रही थी ना, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि यानी कि जब अब कोई इस तरह ना बहुत ज़िंदगी की हकीकत जैसे होती है ना समझ आ जाती है इंसान को, उस तरह है कि जब भी इस तरह कोई फोत होता है या इस तरह होता है, तो मुझे इस तरह ना बहुत ही ज़्यादा इस तरह ना मेरे ऊपर हो जाता है कि ये किस तरह गया है और किस तरह ये फोत हुआ है, और ये नहीं अब रहा कि मैं ज़िंदगी में क्या यानी कि इंजॉय वाला वो इस तरह का नहीं रह गया लफ्ज़ कि मैं बाहर जाऊं या इस तरह करूं या मैं इस तरह काम करूंगी तो क्या मैं खुश होंगी। तो पहले मैं ये सोचती हूँ ना, तो अभी भी मुझे घर में इतना कुछ यानी कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाहिए होती हैं, लेकिन मुझे अब उनकी ना मुझे इस तरह ना कोई खुशी नहीं महसूस होती घर में ना, कि यानी कि उनका होगी तो क्या मुझे खुशी होगी, नहीं होगी। जब मैं अपने दिल को सुकून पाती हूँ, जब मेरे दिल मुतमिन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है ना, और मेरा दिल मुतमिन तब भी होता है जब मैं इस यानी कि जब मैं घर में अक्सर मैं किताब पढ़ती हूँ ना शाम को, या फिर मैं तिलावत लगाती हूँ, तो इस वजह से मेरा दिल कहता है कि मैं हर वक्त मसरूफ़ रहूँ और मैं यही करती रहूँ। लेकिन जब घर वालों की इस तरह होते हैं ना कि वो यही समझते हैं कि जैसे ये तो बिल्कुल उधर की होगी है ना, वो मुझे कहते हैं कि तुम बस तुम जाओ उधर इबादत करने के लिए जाती है, तुम इस तरह करने जाती है, तुम उधर ही रह पड़ो, तुम रजाई भी ले जाओ। तो मुझे समझ नहीं आती मैं उनको क्या कहूँ ना। तो कल भी मेरे साथ इसी तरह हुआ, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तैयार होकर जाऊँ क्लास में, और वो कहते हैं तुम नहीं जा सकती ना। तो मैंने कहा इसमें भी कोई बेहतरी होगी अल्लाह की तरफ से, लेकिन मुझे ये हुआ है कि दुनिया की हकीकत इंसान को समझ आती है।
इससे पहले क्या करती थी 2 साल पहले, क्या सारा वक्त घर वालों के पास ही बैठे रहते थे?
नहीं, घर वालों के पास तो नहीं बैठे रहते थे, लेकिन ये था कि हर वक्त बाहर रहते थे, हर वक्त बाहर शॉपिंग में रहते थे कि आज क्या आया वनिया आज।
यही असल में मैं बताना चाह रही थी कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता ना, फारिग हम बिल्कुल नहीं होते। आपकी इन मसरूफियात पे परेशान हों तो स्टोर्स वाले हों तो ज्वेलर्स हों परेशान, हों तो बुटीक्स वाले परेशान हों, घर वालों को तो खुश होना चाहिए। जब हम अल्लाह की तरफ मसरूफियात नहीं रखते ना, तो हम फारिग फिर भी नहीं रहते, हम बल्कि ज़्यादा मसरूफ होते। घर वालों ने भी ढूंढना है तो यहाँ आ जाएंगे, तो पहले तो ये पता नहीं शहर के किस स्टोर में बैठी हुई है इस वक्त है। तो असल बात ये कि हमें अपने इस काम को सवार नहीं करना। मसलन मैं नबी सल्लम के बारे में सुन रही थी, आप देखिए कि अल्लाह के नबी को थोड़ा सा मैं इस तफरीक के मूड पर लूँगी, क्योंकि हम सब तो बिल्कुल दुनिया के इंसान और दुनिया में लगे हुए लोग और हमारी कोई हैसियत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप देखें, आपके एक वक़्त में 9 घराने भी रहे हैं, हफ्ते के कितने दिन हैं? 7। एक मर्द को 9 घरों की टेक केयर करनी है, और हर बीवी के पास अगर एक दिन का भी उसका वक्त है तो क्या 9 घरों का खाना पीना जिम्मेदारियां हैं? मसले होते हैं घरों में, इतने घरों के अंदर इतनी बीवियों को खुश रखना अल्लाह की पनाह, एक बीवी नहीं खुश हो पाती, कहाँ इतनी बीवियों को खुश रखना। फिर आप देखिए, कोई एक साल ऐसा नहीं कि जिसमें जंग ना लगी हो, मुसलसल ख़तरों की जद में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर वक्त तबलीग भी थी और जिहाद भी था और पर्सनल लाइफ भी थी। लेकिन आप हैरान रहेंगे, हमने जब किया था दुरूद शरीफ के मसाइल, तो उस बुक में हमने थोड़ा सा अल्लाह के नबी के हाल हुलिये के बारे में किया था, फिर 2011 का जो दौरे कुरान, तो उससे पहले किया था। अल्लाह के नबी इंतहाई साफ़ सुथरे, वेल ऑफ, अपने कपड़ों का ख्याल रखने वाले, दाग धब्बा अपने कपड़ों पे पसंद नहीं करते थे, स्मेल अपने पास से नहीं आने देते थे। आपके पास एक बॉक्स होता था, यानी एक छोटी सी पाउच जिसको कह लें, जिसमें कैंची, जिसमें सुरमा, इतर, कंघी, ये हर वक्त साथ होता था। आपने एक मौके पे किसी सहाबी को देखा तो बाल बिखरे हुए थे, तो कहा तुम्हें क्या हुआ? ये अल्लाह की नेमत है, इसका ख्याल रखो। एक दफ़ा आपने किसी को मैले कुचैले कपड़ों में देखा तो आप नाराज़ हुए। इस्लाम कोई भत्तू बनने का नाम नहीं है या बेवकूफ़ बनने का नाम नहीं है। आप यकीन करें कि अगर ख़ुद को यकीन दिला लेना कि मैंने अपनी इन 4 चीज़ों की हिफाजत करनी है, मैंने अपने जिस्म की, जिस्म की हिफाजत के लिए पहली बात है कि अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करें। आप अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपका जिस्म वाकई सही होना चाहिए। गर्मी सर्दी से उसको बचाएं, लेकिन इतना ना बचाएं कि फिर जब ज़रा सा भी ना बचा सकें तो वो ख़राब हो जाए। नेचुरल फूड खाना, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, जो हम सब कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। और हमारा तो पाकिस्तानियों का हाल क्या है कि एक्सरसाइज का सुन के हमें पता नहीं कितने दर्द याद आ जाते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती। हम बाज़ारों में 2-2 घंटे फिर लेंगे अपनी दोस्तों के साथ, लेकिन हम वॉक पे नहीं निकलेंगे। ये हमारी मजबूरी है, हमारा ऐसा हिसाब बन चुका है। आप अपनी रूटीन खुद देखें, किस वक़्त आपको क्या करना है और किस वक़्त नहीं करना। आप अपने आप को देखें, इस वक्त मैंने ज़हनी काम करना है, मैंने कुछ अच्छा काम करना है, बैठने का काम करना है, तो मुझे क्या खाना चाहिए? अगर मैंने अब खाना खा लिया तो मुझे नींद आ जाएगी, तो मुझे अभी नहीं खाना चाहिए। रात सोने से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा भारी खाना खाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी नींद गहरी होगी, बदहज़मी होगी। इस पर कंट्रोल करें, फिर अपनी नींद का ख्याल रखें। बेस्ट मुझे लगता है कि तफरीह अगर काम के दौरान आप कर सकते हैं ना, तो आप 5 मिनट का नैप ले लें बैठे बैठे। आप मुझे मौका दें, आपको 5 मिनट में सो के दिखाती हूँ अल्लाह के हुक्म से, यकीन करें। और उन 5 मिनट में इतने हम रिलैक्स हो जाते हैं। कल इधर इसी जगह पर हम बैठे हुए थे, उल्फत भी थी, तो कोई बात कर रहे थे, तो मैंने ऑनलाइन पर क्लास लेनी थी, मीटिंग थी हमारी कोई, तो फिर साथ ही मेरी सीरत की क्लास का टाइम हुआ, तो मैं सीरत को बड़ा इन्जॉय करना चाहती हूँ। तो मैंने एक क्लास इंचार्ज को पूछा कितना टाइम है ना, तो कहने लगी कि 6-5 पे, यानी टोटल 8 मिनट थे उनके पास। तो मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि जो अगला इससे सेशन है, जो रिकैप है, वो पहले ले लें? तो मेरा दिल था कि मैं सिर्फ 10 मिनट जाके लेट जाऊँ ताकि मैं थोड़ी रिलैक्स करूँ, क्योंकि सुबह से मौका ही नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि वो तो मिल नहीं रही अभी, ज़ाहिर है कि उनका टाइम बाद में है जिन्होंने आना है, तो है तो कोई नहीं ऐसा टाइम। वो बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सी है, उन्होंने सोचा होगा कुछ कर दूंगी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, 7 मिनट है ना, ठीक है मैं ले लूँगी। उल्फा मेरे पास ही, मैंने कहा उल्फा मैंने ना थोड़ा सा रेस्ट करना है, आप जाओ अभी, मेरे से बाकी बात नहीं करो। मैं यहाँ से उठी, मैंने हिसाब लगाया अंदर जाके अपने जाने में कि यहाँ से ऑफिस में जाने में भी 1 मिनट लग गया मुझे। मैंने कहा मैंने अभी 5 मिनट के लिए सोना है और फिर मैंने वापस से 1 मिनट के अंदर वापस आना है ताकि 7 मिनट में मैं आ जाऊँ। यकीन करें मैं लेट गई, गम तो ये था कि पता नहीं मैं सो ही ना जाऊँ, और जब बंदा ज़्यादा देर के बाद लेटता है तो थकर, मुझे इंतहाई कमर में दर्द हुई ना लेटते ही। तो लेकिन वो जहन में चूके था कि 5 ही मिनटें कर करा के मैं उठ के आ गई वापस, बस जैसे जो भी हुआ मैंने कहा नहीं अब वो मेरा टाइम। जब मैं इधर आई तो कुछ दुआएं प्ले हो रही थी, मैं समझ नहीं आ रही, मैंने कहा शायद ये मेरे वेट में इन्होंने प्ले की हैं, मैंने उनका PM नहीं देखा। फिर मैंने हैंड रेस भी कर दिया जो मुझे करना था, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। ऐसे मैंने एकदम देखा तो उसमें फरहाना ने लिखा हो तो कि कोई बात नहीं उस्ताज़ा, आप अपना काम करें, हम ब्रेक पहले ले लेते हैं, तो अब 20 मिनट की ब्रेक है। जब मैंने पढ़ा 20 मिनट की ब्रेक है, मैं फिर जाके लेट गई। हालांकि 20 नहीं, सिर्फ 5-6 रह गए हुए थे मिनट, फिर वो सारी नाने जानियों में मेरे सिर्फ 26 मिनट थे और या 24 थे, तो 30 पे ब्रेक है, मैं फिर जाके लेट गई। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वो इतने सुकून से ली, कल ग़ज़वे बदर पढ़ाया कि आप भी सुने, तो बाकी जिस तरह बंदे का खून गर्म हो जाता है तो फिर उनकी ब्रेक भी चूंकि हुई हुई थी तो मुझे आम टाइम से भी ज़्यादा मिला, क्योंकि अगली क्लास का रिकैप भी नहीं हो रहा था, वो नहीं अवेलेबल थी। उनके भी 20 मिनट मुझे मिल गए, 40 मिनट की बजाय मेरे हाल मैंने 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाया, तो मैं रिलैक्स हो गई। तो अगर मैं सोती तो सोती रह जाती ना। तो ख़ुद को देखें कि कहाँ मैंने क्या करना है। कुछ डीप ब्रेथ लें, ओपन एयर में जाएं, चाय का कप पिएं। चाय की मुझे तलब तब होती है जब मैंने बहुत बोलना होता है, या मुझे नींद आ रही है, या सफ़र किया हुआ है। तो बहरहाल ये कि हर बंदे का फ़र्क है, कुछ खा लें पी लें। बाज़ दफ़ा हम बैठे ऊँग रहे होते हैं, कोई कैंडी है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको फ़ील होता है कि आप फ्रेश होंगे, तो अपने जिस्म का उस तरह आप ख्याल रख सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि जितना आप अल्लाह के ऊपर अपने आप को छोड़ देंगे ना, आपकी थकन कम होगी। मेरा तो यही मान है। गम, फिक्र, अंदेशे, सदमे, ये बंदे को तोड़ के रख देते हैं। आप हर बात में कह दें उफ़्विज़ अम्री इलल्लाह, अपने मामला ठीक रखें। सुन्नत इसके लिए बेहतरीन उस्वे हसन है। एक हफ्ता अगर आप इस पर अमल करके देख सकें, और यकीन करें हमें सबको मिल के एक जगह रह के ये रूटीन करनी पड़े, तो करके देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने और आपके जागने के वक्त, खाने पीने, एक्सरसाइज, जो भी उसको अप्लाई करे, आपके वक्त में बेशुमार बरकत हो जाएगी। आज हमारी ज़िंदगी में बरकत कम क्यों है? कि बरकत का वक्त हम सो के गुजार देते हैं और रातें जाग जाग के गुजारते हैं जब हमारा जिस्म सोना मांगता है। तो इंशाल्लाह तफरीह करें, फिर इसके लिए अपने जहन को रखें। एक जहनी तफरीह होती है, एक होता है आप जाएं कहीं। अभी सर्दी में कौन जाए, कहाँ जाए? आप कंप्यूटर खोल के कोई अच्छा प्रेजेंटेशन देख लें। अक्सर मूड्स होते हैं ना, इस वक्त आपका मूड किस चीज़ का है। फिर इस तरह जहन की हिफाजत जो आपने करनी है, उसमें आप बेदर तफक्कुरात को अपने दिल पे ना लगाएं। बहुत सारे अंदेशे जो हमें घेरे होते हैं ना, वो होते कोई नहीं। मसलन हम सोचते हैं कोई मसला, मिसाल एक लड़की है, उसका अपना कोई मसला है, मिसाल है शादीशुदा, उसको गम ये हाय मेरा शौहर दूसरी शादी ना कर ले, ये अंदेशा है उसको। अब इसने उसको जहन को थकाया हुआ है, हर वक्त चुटों में, गम में, फिक्र में, ये ना वो ना। तो क्या बताइए, 90% बीवियों के मियाँ दूसरी शादी करते हैं? नहीं करते। तो मैंने उस अंदेशे को पाल के करना क्या, जो होना जब होगा तो देखेंगे। आप अपने आप को रिलैक्स करें। एक अंदेशा माओ को आ सकता है, पता नहीं बच्ची का मुस्तकबिल कैसा होना है, अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं ये ऐसी है, इसको ऐसे ना ऐसा। अभी तो हुआ नहीं है ना, कल होगा तो देखेंगे ना, आप अभी क्यों परेशान है? आप वो कहते हैं ना कि पीछे मारे अपने गमों और तफक्कुरात के बोझ, वो फविज अमरी लल्ला। यकीन करें मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ, 6 उनकी अपनी बेटियाँ थीं, बिल्कुल अभी बच्चे छोटे थे, यानी मीडियम एज में थे, और उनके मियाँ की डेथ हो गई। गुर्बत मियाँ की ज़िंदगी में भी बहुत थी, खैर से 6 बेटियाँ थी। मियाँ के बाद उन्होंने बेटे बीच में थे, कुछ बेटियाँ छोटी थी, कुछ बड़ी थी। खैर किस्सा मुख्तसर, उन्होंने एक एक करके अपनी बेटियों को ब्याहा। अब आप सोच सकते हैं, किसी रिश्तेदार ने अपना घर उनको दिया हुआ था, उसी में कहा आप रहते ही रहे, घर में उनका गुजारा वो होने लग गया। फिर एक बड़ी बेटी की शादी की, जब बड़ी बेटी की शादी की उन्होंने, तो दामाद उम्र का भी ज़्यादा था, पता चला कि बाद में उसको शुगर और क्या मेरे तकलीफ़ें हैं। 3-4 साल वो बेचारी अपने मियाँ के साथ रही। एक बच्ची हुई, अभी बच्ची पता नहीं कुछ महीने या साल की थी, तो उस दामाद का इंतकाल हो गया। वही बेटी जो भेजी हुई थी, वो एक और बेटी लेके वापस आ गई, क्योंकि उसके ससुराल में भी और कोई नहीं था। वो कहती थी मैंने एक भेजी थी, 2 ले ली, 7 बेटियां हो गई अब एक किस्म की। एक एक करके उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में, जिसको कहते हैं इज्जत के साथ, उन्होंने 6 बेटियों की ब्याही। और आपको पता है जो हमारा कल्चर है, दीन जहाँ नहीं होता तो चाहे आपके सह नहीं, लेकिन बेटियों को जहेज भी, शादी भी करनी। फिर 2 बेटों की शादियाँ की, फिर अब उन्होंने अपनी उस नवासी की शादी की है। और आप कभी उस औरत को देखें ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह शुक्र, ठीक है अल्लाह, मेरे काम तेरे, मेरे तो अल्लाह बड़े संवार देता है। सच्ची बात है, मैं सोचती हूँ तो अल्लाह वही काम किसी के ज़रिए मेरा कराता है, वो ये कहती हैं। लोग बल्कि उनको मजाक करते हैं, कहते हैं ये सीधी सी हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं होता, ये खाला, ये पुफी, ये फलां, ये, इसको तो कोई गम ही नहीं। वो कहती मैंने क्या करना है, जब सर पर आती है अल्लाह करा देता, अल्लाह करा देता। जितना आप अपने काम अपने हाथ में लेंगे ना, अल्लाह आपके ऊपर डाल देगा। लोगों के ऊपर नजरें लगाएंगे, अल्लाह आपको लोगों पर डाल देगा। आप अल्लाह पर डाल के देखिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपके काम करेगा। बिल्कुल रिलैक्स रहा करें। मैं तकदीर को नहीं बदल सकती, मैं अपनी किस्मत को नहीं बदल सकती, जो होना है वो हो के रहेगा। किसी ने मरना है अगर मेरे घर में से, तो मरना है, मैंने भी मरना है। किसी ने बीमार होना है तो होना है। बच्चे बच्ची को कोई गम मिलना है तो मिलना है। छोड़िए, कुछ नहीं होता। यकीन करें, माँ बाप मिल के भी बच्चों को खुशियाँ नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना देना चाहे। तो जब मैं दे नहीं सकती तो मैंने गम क्यों मनाना है? अल्लाह की ज़ात जब हम पे कोई गम डालती है ना, तो वो साथ ही साथ हमें उसका हौसला भी देता है। मैंने एक कल्चर वालों की बात बड़ी अच्छी सुनी है, कराची के कुछ लोग हैं, दिल्ली वाले कहलाते हैं, बहुत साबिर लोग हैं। क्योंकि हम लोग पंजाब से बेसिकली थे, फिर हम कराची में जब मूव हुए तो बहुत बेसिक डिफरेंस हमने देखा। जहाँ हम रहते थे वहाँ मोस्टली कम्युनिटी दिल्ली वालों की है। अब आप सब भी मोस्टली पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कोई पंजाब की बुराई नहीं कर रही, मैं आपको रियलिटी की फैक्ट पे बात करती हूँ। खुदा ना खास्ता कोई मर जाए तो जो हमारे हालात होते हैं आपको सबको पता होगा, शहरों के तो मुझे पता है, गाँव के आपको पता होंगे। रोना ना भी आ रहा हो तो मैंने देखा है लोग घर वाले को देख के यूं धाड़ मार के रोते हैं कि पता नहीं ये हमसे ज़्यादा गम किसी को नहीं है। और गम को मनाते हैं, जैसे सेलिब्रेट करना है ना, गम मनाते हैं, और कान पड़ी आवाज़ नहीं आती। हम इसी चीज़ के आदि थे। इतने में हमारी उस कम्युनिटी में किसी की डेथ की खबर हुई, हम गए, ज़रा हमसाईगिरी थी और आना जाना था। यकीन करें आप, पिन ड्रॉप साइलेंट उस घर में था। मैयत भी घर में है कहीं पड़ी हुई, घर में उस मरने वाले की बेवा भी है, बेटियां भी हैं, और आ रहे हैं लोग, घर भरा हुआ है। यकीन करें आम हालात में वो लोग ठीक ठाक बातें करती हैं औरतें, और आपको कहाँ से पता चलेगा किसका घर वाला है। कोई एक औरत ऐसे बैठी होगी अकेली और उसकी आंखें जहर सूजी हैं, ना उसकी आवाज़ और ना कुछ, कोई उसका अपना प्यारा बैठा है। जरूरत नहीं किसी आने वाले की के घर में मरने वाले के करीबी लोगों से जाके बात भी करें, उनसे नहीं पूछना। कोई हमारे जैसे लोग जो बेचारे देखते हैं वो पूछने कौन है किधर है उसकी, आप बैठे, वो सदमे में है, उनको नहीं कुछ कहना, अल्लाह का हुक्म ये था, अल्लाह का हुक्म ये था, और खामोशी से चुपके चुपके वो बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं, जरूरत नहीं देते, कोई आवाज़ नहीं, कुछ और नहीं। जैसे एक ईगो होती है ना, वो दूसरे के सामने रोना अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं। करीबी से तो पूछने ही नहीं देते, बाद में जाके बाहर कोई किसी घर से जाके पूछे क्या हुआ था, क्या मरे थे, तो बता। तो हमारे घरों के लोग कहते हैं हाय, इनको तो पता नहीं कुछ सदमा ही नहीं हुआ मरने का, इतना सुकून, इतनी पीसफुली, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, जो अल्लाह ने चाहा वो होगा। तो आप भी इंशाल्लाह अपने आप को मुतमईन रखें। जब हम सीधे चलते हैं ना, हमारे पांव जमीन पे होते हैं, हम नहीं थकते। पानी के अंदर से होके आए ना, कभी समंदर के किनारे गए हों, बहुत थकेंगे, क्योंकि आपको पानी के खिलाफ अपने आप को रोकना पड़ता है। इसी तरह जब हम सफ़र करते हैं जहाज़ में, उससे भी हम बहुत थकते हैं। शायद आपने देखा होगा 2 घंटे की भी ट्रैवल होती है, लेकिन जब हम उतरते हैं तो थकते हैं, क्योंकि हमारे कंधों पे बहुत बोझ आता है जहाज़ों में। बिल्कुल ज़िंदगी के सफ़र में वही मुतमईन होगा जो इंजॉय करें, अपने काम को आप इंजॉय करें। तफरीक क्या है? मुसलसल खुशी। जिसको काम के अंदर ही खुशी मिल गई, उसको काम से छुट्टी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी कभी हो तो मिले, जाए, अपने अंदर अट्रैक्शन पैदा करें, घर वालों के लिए अट्रैक्शन हो। बिल्कुल कोई आपको किताबी कीड़ा ना कहे, कोई आपको अल्लाह वाली ना कहे, कोई आपको दर्स वाली ना कहे, कोई नूरुल कुरान वाली ना कहे, और ये ना कहे कि इनका दिल ऐसे ही लगता है और ये तो अब कुछ नहीं करती। मैं नहीं मानती, यकीन करें आप सब मेरे सामने हैं, जितना भी आपको मैं जानती हूँ, मैं नहीं समझती कि आप में से कोई इतना बिजी है कि वो अपने घर में जाके अच्छे कपड़े ना पहन सके। मैं नहीं मानती कि आप में कोई इतना बिजी है कि वो अपने शौहर की खुशी का सामान ना बने, आप उसके लिए सजे संवरें। मैं बिल्कुल नहीं मानती, मुझ समेत, वल्लाह ही मुझ समेत, हम सारों में से कोई इतना बिजी नहीं कि हम बीमारों को देखने ना जा सके, हम बच्चा पैदा हो तो उसको देखने ना जाएं, किसी को पाकिस्तान से कोई नया है तो उसकी दावत ना करें। मैं नहीं मानती, मैं अपने ऊपर लेके बात करती हूँ, अगर मैंने करना हो तो मैं सब कुछ भी कर सकती हूँ। मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं कहूँगी कि मैं बिज़ी बहुत हूँ। मैं दावत में भी जा सकती हूँ, मैं बुला भी सकती हूँ, और जब मैं यहाँ से जाऊँ, चाहे 9 बजे, 10 बजे, 8, उसके बाद मुझे कोई फिक्र नहीं होती आपकी क्लासों की, जो मर्ज़ी आप करें, ये मेरा घर है। अब मुझे अपने भैया का खाना पकाना है, किचन में हो एक घरेलू खातून बन के रहें, आप घर में आए बिल्कुल, आप फिर उस वक्त ना अपने आप को बनाएं कि आपको लोग कोई ग्रुप लीडर कहता है, या आपको कोई क्लास इंचार्ज कहता है, या आपको कोई उस्ताद कहता है, आप एक औरत हैं। हम सब अपने आप को जहाँ रखें उसके तकाजे पूरे करें। माँ के पास है तो बेटी बन के उसको दिखाएं, शोहर के पास है तो बीवी बन के दिखाएं, बच्चों के पास है तो माँ बन के दिखाएं, और स्कूल में है तो स्टूडेंट बने। एक बंदे के कई रूप हो सकते हैं, परत उतारते जाएं, ऊपर से उठते जाएं, आप अंदर से वो हैं। मसला कब होता है? जब हम इस दिमाग में बड़ा काम है, बड़ा जाना शाम को है, सुबह से फिक्र लगा हुआ है, मेहमानों ने रात को आना है, हमें 2 दिन पहले से फिक्र लगी हुई है कि मैंने खाना पकाना है। मुतमईन, कूल डाउन, मुतमईन, फिर आपको ज़्यादा फिक्र नहीं होगी तफरीक की। और मैं इस टॉपिक को करते हुए सोच रही थी कि अब शुक्र है कि ये तफरीक का बोला, तो इसके साथ ही आगे दिसंबर आ रहा है छुट्टियाँ, वरना आपके तो मुँह लटक जाने थे कि हमें तो छुट्टियाँ मिलती कोई नहीं है। तो क्या प्लान बनाया आप लोगों ने इन छुट्टियों का? कुछ सोचा आपने क्या करना क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमने सोना है, कितना सो सकते हैं आप? खाना पकाना, मैं कहती हूँ जितनी तफरी दीन के साथ है आपकी तो पार्टियां ही बंद हो जानी है 15 दिन तक, आपको कोई रोज का खाना ही नहीं अच्छा मिलना। घर बैठ के तो पकाएंगे तो खाएंगे, यहाँ तो आपको मजे से मजे मजे के खाने मिलते हैं। हैं, जितनी मैं समझती हूँ सोशलाइजिंग दीन के कामों के बाद होती है, वल्ला ही कोई दिन नहीं जो प्लाव से खाली, कोई दिन नहीं जिसमें आपको केक ना मिले, अल्लाह ही नेमतों का हिसाब हमसे ना ले। घर बैठे आपको कौन खिलाता है? कभी आपको किसी ने घर बैठ के पुलाव रोज भेजा? यहाँ आते हैं तो अल्लाह के मेहमान बन के मिलता है ना आपको, फिर हम उससे भी थक जाते हैं कि अब रोज ही हम ये खाने खाएं। मेरे पास भी चॉइस थी, मैंने तो कहा कि नहीं मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, और मेरे से फारिग रहा ही नहीं जाता इस मामले में कि मैं इतने दिन तक पढ़ूँ ना पढ़ाऊँ ना, हालांकि ऑनलाइन की एक दो क्लासेस होगी। तो हमने इसके लिए ना यूके का ट्रिप बनाया है, हर जगह ज़ाहिर साथी चाहते हैं, मुझे लगा कि करीब तरीन यही है कि जिसमें हम दूसरों को फ़ायदा भी दे सकते हैं, करा सकते हैं, मकसद ये कुछ करें। मैं ये सोचूँ ना कि मैं आपको यहाँ टीच करती हूँ तो ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सूरज यहाँ से निकल के आप इस वक्त कहीं और चला जाएगा ना, तो वहाँ भी काम कर रहा है, हमारी छुट्टियाँ भी काम की होनी चाहिए, तफरी उसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो चले अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।